نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. کامیابی کی 10 صفات، اس میں سے آج ہم جس صفت پہ بات کریں گے یہ ہے مثبت پر امیدی. مثبت کا لفظ پازیٹیو اور پر امیدی ہوپ فل ہونا، یعنی پازیٹیولی ہوپ فل ہونا یہ کامیابی کا ایک نسخہ ہے. بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ گن نہیں جانتے، اس لیے مایوسیوں کا شکار ہوتے ہیں. اگر کسی چیز کو اس کی اپوزٹ سے دیکھنے کے کلیے پہ عمل کریں تو مثبت پر امیدی کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ مایوسی، بد دلی، ہچکچاہٹ. اب مسئلہ کیا ہو گیا کہ اردو میں لفظ بولیں تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں، یہ میم سے لکھنا تھا، یہاں سے لکھنا تھا، کھو جاتے ہیں. اور اگر میں اس کو انگلش میں بول دوں، مایوسی ہوپ لیس، بد دلی ڈس ہارٹ، اور ہچکچاہٹ ریلکٹنٹ ہیزیٹیشن، تو یہ اپنے لگتے ہیں اور اردو کے لفظ پرانے لگتے ہیں. کیا یہ سچ ہے؟ تو بس یہی دیکھنا ہے، کیا میں مایوس ہوں؟ کیا میں ہر وقت ہوپ لیس رہتی ہوں، بد دل ہوں؟ میرا دل کھٹا کھٹا ہوا ہے، یا میرا دل ہر چیز سے برا، ہر چیز ہی بری لگتی ہے، ہچکچاہٹ ہے، آگے بڑھنے سے پیچھے ہو رہی ہوں. تو یہ اگر آپ کی کیفیت ہے تو پھر دیٹ مین آپ کو اس ٹاپک کو سننے کی ضرورت ہے. اس کے ہم معنی لفظ کے ہیں، کیونکہ مثبت پر امیدی بڑا لمبا اور مشکل سا لفظ ہے، تو اس کے آسان لفظوں میں اسی کے سملر میننگ. نمبر ایک، پر امیدی، بی ہوپ فل، جوش. جوش کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایکسائٹمنٹ. اور یاد رکھیے کہ ایکسائٹمنٹ بندے کا خون بڑھائے نہ بڑھائے اس کی انرجی بڑھا دیتی ہے. ایک دم ہمارے اندر انرجی بھرتی ہے اور ہم کہتے ہیں بس پانچ منٹ میں آئی. اور ویسے آپ کے پاس وہ اگر نیوز نہ پہنچی ہوتی جس نے آپ کو ایکسائٹیڈ کیا، تو ہو سکتا ہے آپ ایک گھنٹہ بستر پہ لیٹے رہتے اور اٹھتے بھی نہ. پھر اسی طرح امید، ہوپ. ناکام لوگ کیا بولتے ہیں؟ یعنی اس اینگل سے جو لوگ ناکام ہیں نا، جو مثبت پر امیدی سے محروم ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ میری قسمت ہی خراب ہے، میں تو جو کام کرتی ہوں وہ بگڑ جاتا ہے. اگر اس قسم کے منفی اور نیگیٹو جملے آپ بولتے ہیں، نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، امپاسبل، میں جانتی ہوں، مجھے زیادہ پتہ ہے اپنے آپ کا، تو پھر سمجھیے کہ آپ مثبت پر امید نہیں ہیں. کامیاب ہیں اگر آپ تو کیا بولیں گے؟ ہر چیز ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، جی بالکل بالکل ٹھیک رہے گی، بالکل اچھا، اگلی بار اس سے بھی اچھا ہوگا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ گرے ہوئے کو بھی اٹھا کے کھڑا کر دیتے ہیں، بس ابھی نہیں ٹھیک ہو جائے گا، نہیں جی یہ کرنا ہے کام، دیکھ لیں سوچ لیں، مشکل لگ رہا ہے، وہ نہیں کچھ بھی نہیں مشکل. بس آپ دیکھیں گے یہ جملے جو انسان بولتا ہے نا، اس سے سمجھ آتا ہے کہ یہ واقعی پر امید ہے. اور یاد رکھیے، بڑی معروف بات ہے، قرآن میں بھی اس کی ایک دو مثالیں میں دے سکتی ہوں آپ کو اگر آپ لینا چاہیں، کہ جس چیز سے ایک انسان ڈرتا ہے نا، وہی بات ہو کر رہتی ہے. سنا ہوا یہ محاورہ؟ وہی ہوا جس کا ڈر تھا. اردو میں یہ محاورہ عام ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ جو کچھ ذہن میں ہوتا ہے جسم وہی کرتا ہے. مثلا فرعون کو ڈر تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ میرا تخت نہ الٹ دے اپنے خواب کی روشنی میں. سب کو یہ واقعہ پتا ہے. اللہ نے وہی کیا جس کا اس کو ڈر تھا. موسیٰ کو اس کے گھر میں پلوایا، اسی کے سامنے رہا، لیکن وہ موسیٰ بعد میں اس کو دکھ دینے کا ذریعہ بنا. تو لکھ لیجئے، جس چیز سے آدمی ڈرتا ہے وہی بات ہو کر رہتی ہے. ہم جب ناروے میں آئے اور یہاں سیٹ اپ شروع ہوا، کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کچھ لوگوں کے لیے کچھ اور اینگل سے تھیں، تو مجھے کسی یہاں کی رہنے والے کی بات یاد آئی تھی. انہوں نے اس وقت یہ جملہ بولا تھا کہ ان کو جس بات کا ڈر ہے نا، دیکھیے گا یہ ہو جائے گی اب، اور آج وہ ہو گئی بھی ہے، کئی سال سے ہو گئی بھی ہے. تو یاد رکھیے، آپ اپنے لیے اچھی چیزوں کو لیں، مت ڈریں. ویسے ایک لڑکی کہتی ہے مجھے ڈائیورس ہو جانی ہے، مجھے ڈائیورس ہو جانی ہے، پھر ہو ہی جائے گی. میں آپ کو اپنی بالکل بہت کلوز سرکٹ فرینڈ کی بات سناتی ہوں. جب ہم کالج میں تھے ویسے ہی تھے جیسے سارے ہوتے ہیں، بہت اچھے بھی نہیں تھے. تو ہماری ایک دوست تھی، ابھی بھی ہے الحمدللہ، تو اس کو ایک وہم تھا. اور وہ کیا تھا کہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ بڑی جلدی ہو جانی ہے، اول تو میری شادی نہیں ہونی، ہو گئی تو میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جانی ہے. اور اس کی نا بڑی بہن کے میاں کی بھی ڈیتھ ہوئی کچھ اس طرح اس کی ینگ ایج میں. یعنی اس کے دل میں یہ خوف بیٹھا ہوا تھا. اس کے بعد ظاہر ہے کالج اسکول چھٹا، ہم ادھر ادھر جہاں بھی ہو گئے. کافی سال بعد جب میں امریکہ چلی گئی تو ایک دن اس کا فون آیا نا، پتہ چلا کہ وہ بھی ادھر ہی ہے. وہ ایک اور اسٹیٹ میں تھی، میں کسی اور اسٹیٹ میں تھی. तो खैर मैंने उससे फिर थोड़ी राहो रसम हुई, पुरानी दोस्ती तो पुरानी होती है। तो मैंने क्या देखा, बीच में शायद 10-12 साल का वक्त गुजर चुका था हमारे वो कॉलेज से लेकर फिर अपनी अपनी ज़िंदगी में जाने का। ये मुझे पता था उसकी शादी हुई है, खबरें दूर दूर से तो दोस्तों की मिलती रहती है ना। लेकिन मैंने क्या देखा, आज भी वो उसी फियर का शिकार है। फिर मेरी उससे मुलाकात हुई, अब उसके मियाँ का नाम भी मुझे अब याद आ रहा है, तो वो कहती थी कि हर वक्त मुझे गम फिक्र लगा रहता है, नाम लेके कहती थी इसको कुछ हो जाना है, इनको कुछ हो जाना है। फिर एक दफ़ा अल्लाह का करना देखिए, वो बीमार भी हो गए और उनको हार्ट की तकलीफ शुरू हो गई। वो मैंने कहा तुम तो इंतज़ार कर रही हो कि तुम्हारे मियाँ को कुछ हो, क्योंकि तुमने बचपन से किसी से सुन लिया कि तुम्हारे मियाँ को कुछ होना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ज़िंदगी थे, अभी ठीक है, बच्चे जवान हो गए होंगे अब तो। लेकिन कहने का मतलब कि वो उस खौफ से नहीं निकल सकी, फिर अल्लाह ने उसको कुरान से जोड़ा, हो सकता है बेहतर हो। हर वक्त कहती थी कि मैंने मैंने बेवगी में ज़िंदगी गुजारनी है, पता नहीं उसको क्या खौफ था। तो देखिए हम जो सोचते हैं ना, फिर बाज़ दफ़ा वो हालात होने लगते हैं। हमेशा अपने बारे में अच्छी तवक्को रखें। आप एक कामयाब फर्द को इसकी मुस्बत खुद तवक्कुई, तवक्को होती है ना, मुस्बत खुद तवक्कुई के जरिए फौरन पहचान सकते हैं। मसलन कामयाब इंसान क्या तवक्को रखता है, तवक्को का मानी क्या, एक्सपेक्ट करना। हमेशा ये कहा करें मेरे साथ बहुत अच्छा होना है, देखना कल बहुत अच्छा होगा। मसलन देखिए मेरे पास एक केस आता है किसी का और वो डिवोर्स करीब है बिल्कुल, तो पेरेंट्स परेशान है, तो मैंने कहती हूँ देखना इस डिवोर्स में बड़ी खैर है, इसके बाद बहुत अच्छा होना है। तो बाद जो मेरा मुंह देखते हैं, अच्छा जी हमने तो इस्तखारा भी किया था, हम तो काबे में भी चले गए, हम तो ये भी किया वो भी। तो मैं उनको कहती नहीं देखना इसके बाद बड़ी खैर है, उनको नहीं मेरी बात समझ आती। फिर बाद में अगर अल्लाह का साथ हो और हालात साजगार हो तो वो बात सच भी हो जाती है। हमेशा कहें मेरे साथ कल अच्छा होगा। और एक हदीस है, मुझे उसका इस वक्त रेफरेंस याद नहीं है, रिवायत ही कह दें, अच्छे दिनों का इंतज़ार इबादत की बेहतरीन किस्म है। खैरुल इबादा क्या है कि मेरे साथ कल अच्छा होगा। आप बीमार है, कोई आके पूछते सुनाओ भाई क्या हाल है, आप कहते हैं बस ठीक हो रही हूँ, कल ठीक हो जाऊंगी। कोई ब्रदर है घर में फाके हैं, जॉब उतरी भी है, सुनाओ मियाँ क्या हाल है, बस देखना अब मेरा कारोबार ठीक होने वाला है, बस मुझे जॉब मिल जाएगी। ये है मुस्बत खुद तवक्कुई और मुस्बत पुरुमीति, मेरे हालात फौरन बदले जाएंगे। तो चंद चीज़ों से अपने आप को पहचानिए कि आप कामयाब हैं कि नहीं। नंबर एक, कामयाब इंसान जीतने की तवक्को रखता है। जो खिलाड़ी घर से जीतने की उम्मीद लेके जाएगा ना, वही जीतेगा। उर्दू या पंजाबी का एक मुहावरा है ना, जो घर से जाए ही हारने के लिए उसको कौन जिताए। कई लोग होते हैं हमें कहाँ कामयाबी होनी है, तो अब बताए एक बल्ला ही ना उठाए मैंने कौन सा जीतना है जो मैं बल्ला उठाऊं, फुटबॉल को किक ही ना लगाए मैंने कोई जीतना है, तो कभी भी नहीं जीतेगा। किसी का मसला हार और जीत होता है और किसी का मसला फर्स्ट और सेकंड होता है। वो कहता है मैंने फर्स्ट से नीचे नहीं आना। स्टूडेंट्स हैं आप भी सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट कहते हो पास हो जाइए बड़ी गल है भाई, वो एक हमें हाथ में डिग्री लेनी है। कुछ कहते नहीं मैंने A+ ग्रेड से A पे नहीं आना, वो मेरी मौत है। तो आप देखेंगे वो A+ से A पे आएंगे ना तो वो दुखी होंगे, लेकिन A से नीचे नहीं जाएंगे, वो कभी B C D पे नहीं आएंगे। क्यों? उनको पता है कि हमें यही लेना है। और जो कहता है वो बस 33 नंबर लेने जा रहे हैं, तो आप देखना उसके 32.5 आएंगे, आधा नंबर ग्रेस मार्क में उसको मिलेगा तो पास होगा। हमेशा आगे चलें। ये शख्स जिंदगी को एक हकीकी खेल समझता है, इसे जुआ नहीं समझते। लाइफ इज नॉट अ गैम्बलिंग। बस लोगों ने जिंदगी को दांव पे लगाया हुआ है, सट्टेबाजी हो रही है, देखते हैं वक्त का धारा में किधर ले जाता है। लेट मी सी, आई विल थिंक, आई विल डू। आपके नहीं, दिस लाइफ इज रियलिटी, इट्स नॉट रिहर्सल। किसी का एक कमेंट भी कहीं पढ़ा था कि दिस लाइफ इज नॉट अ रिहर्सल। रिहर्सल में होता है ना गलती होगी, वी विल अनडू। जब प्ले खेलेंगे तो ठीक हो जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे ठीक हो जाएंगे। कभी आपने बच्चों को देखा हो तैयारियां कराती हैं जब टीचर जमाएं तो फिर कहती हैं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे प्रेजेंट करना बेटा, ऐसे खड़े होना बेटा, आप बहुत तेज बोल रहे थे बेटा, आप जरा आंखें कम खोलें। कहते ना इट्स फाइन, चलो वी हैव मोर चांस, बट दिस लाइफ इज नॉट अ रिहर्सल, दिस इज रियल प्ले एंड वी आर एक्टिंग अपॉन। अब सवाल पैदा होता है कि जीतने की तवक्को किन वजूहात पे आती है? आप कहते हैं मैं मुझे कोई इंसेंटिव ही नहीं है, मोटिवेशन चाहिए। तीन चीजें लिख ले। कामयाब लोग जीतने की तवक्को तीन वजूहात पे की बिना पे करते हैं। देर आर थ्री रीजन्स कि आई विल बी सक्सेसफुल। नंबर एक, ख्वाहिश। किस चीज की? जीतने की। सबसे पहले आप अपने अंदर ख्वाहिश पैदा करें, मुझे जीतना है, आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल। मतलब पैसे की जुबान में कहें आई वॉन्ट टू बी मिलियनेयर, दीन की बुनियाद में कहें आई वॉन्ट टू बी मिन सबिकून अल अव्वलून, मैंने जन्नत तो फिरदौस लेनी है, ये मेरा गोल है। क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा जब मांगो जन्नत फिरदौस मांगो। हालांकि मजे की बात है, अल्लाह के नबी को भी ये पता है कि सबको कोई नहीं मिलनी, बहुत थोड़े लोग होंगे उधर। लेकिन हाई अचीवर, हाई गोल, आपने ये नहीं कहा अच्छा जन्नत का दरवाजा ही मांग लो, चलो धक्का ले एक को पीछे से डाल ही देगा अंदर, नहीं। आपने कहा जब मांगो जन्नत अल-फिरदौस मांगो, क्योंकि उसकी छत रहमान का अर्श वाय हाई अचीवर। ख्वाहिशें बड़ी पैदा करें, निगाह बुलंद कहते हैं इसको। लीडर जो होते हैं उनकी निगाहें बुलंद होती है, वो बड़े प्लान करते हैं, कहते नहीं यहाँ थोड़ी रुकना है, हमने हमने भी बहुत कुछ करना है। कोई कहेगा लो यही नहीं पूरा हो रहा और क्या करना है, ना हो लेकिन कल हो जाएगा, बात समझ गए। तो फर्स्ट थिंग, आपको अपने अंदर होप्स लाएं, बैठ के ना खुद से बातें किया करें, रीजनिंग करें। तो मैं क्यों एक मुरझाया हुआ फूल बन के बैठी हूँ, मेरा क्यों ऐसा हाल है, कैसा ऑरेंज जिसमें से जूस ही निकाल लिया हुआ है और सूखे हुए सड़े छिलके पड़े हुए, क्यों? मुझे अल्लाह ने इसलिए पैदा किया। अपनी माँ का सोचे, मेरी माँ ने मुझे इसलिए पाला। बाप का सोचे, उसने मेरे ऊपर इतना पैसा लगाया, इतना प्यार दिया, इतना दिया कि मैं होपलेस होकर बैठी हूँ। देखिए बाज़ लोगों को ना खाने की होश, पीने को भी नहीं दिल करता, कपड़े भी नहीं पहनने को दिल करता, सफाई भी नहीं करते, बैठे हुए। तो दैट मीन उनके अंदर से ख्वाहिश मरी हुई है। आप कहते हैं अच्छा ख्वाहिशें तो बहुत बुरी चीज़ है, कुरान तो कहता है कि आरफ अरई तमन इतखज इलाहु हवाहु, ये अल्लाह के नबी कहते हैं जी सबसे बदतरीन माबूद दुनिया में है वो ख्वाहिश है। तो फिर ये क्या बात हुई? तो फिर ये ख्वाहिश तो बुरी नहीं। देखिए ख्वाहिश ना होती तो जन्नत की तलब कौन करता? कुरान में आयत मौजूद है, सूरह सजदा में आप रोज़ पढ़ते होंगे, यदूना रब्बहुम खौफम व तमन। तो तमा क्या है? तमन्ना, इरादा। तो जन्नत की ख्वाहिश रखें। ये जो रूहानियत के नाम पे या तसव्वुफ के नाम पे कुछ लोग ये कह देते हैं ना कि मुझे जन्नत की ख्वाहिश नहीं है, और रबिया बसरी ने कहा कि मैं आग ले जाऊं और जन्नत को आग लगा दूं, और पानी ले जाऊं और जहन्नुम को जला दूं, और लोग कहते हैं हमने जन्नत की तलब में नेकी करनी है, जहन्नुम से डरना है, मैं तो ऐसी नहीं हूं। तो ये गलत, मैं नहीं मानती ये कि उनकी तरफ लगाया हुआ तो उन्होंने कहा होगा, इस्लामी क्रीड से ये बात अगेंस्ट है। मैं ख्वाहिश परस्त हूँ, इस्लाम ये तो नहीं कहता ख्वाहिशें ख़त्म कर दो, हमें भी आपको यही तो कहा गया, खुद अल्लाह ने सूरत आल इमरान में कहा, पढ़ चुके हैं, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन्निसा वलबनीनि वलक़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़्ज़हबि वलफ़िज़्ज़ति, 14 नंबर आयत है सूरत आल इमरान की। अल्लाह कहते हैं डाली है मोहब्बत, ख्वाहिशों की मोहब्बत, हुब्बु शहवात, वहाँ क्या है? ये नहीं कि हुब्बुल बनीन बेटों की मोहब्बत नहीं, हुब्बुल अज़वाज नहीं, हुब्बु शहवात। तो शहवात ही तो ख्वाहिश है। करता क्या इस्लाम? कहते इन शहवात को ऊपर ले जाओ, ये दुनिया में ना रह जाओ, इसी रोज और शब में खो के ना रह जा कि तेरे जमानों मकान और भी हैं। इस्लाम कहते इन ख्वाहिशों को मूव करो, ट्रांसफर्ट करो, इनको इनको फ्लिते कर दो, किधर? आखिरत में लूंगी। जो चीज़ यहाँ हलाल से और अल्लाह की रजा के दायरे में रहते हुए मिलती है यहाँ ले लो, और जो चीज़ यहाँ नहीं मिलती फिर उसको छोड़ दो कि ये वहां जाके लूंगी। ठीक है, तो ख्वाहिश बुरी चीज़ नहीं है। ख्वाहिश की वजह से तो बंदा रात को तहज्जुद पढ़ता है कि जन्नत की ख्वाहिश है, यदू न रब्बहुम। और ख्वाहिश ही तो है जो बंदे को आम दर्जे के मुसलमान से उठाकर आला दर्जे का मुसलमान बनाती है। तो इसके लिए मुझे आपको ज़रूरत है इस बात की कि ख्वाहिशें रखें, अदरवाइज आप कभी भी कोशिश नहीं करेंगे। ये मैं आपको भी बता दूं, मौजूदा हालात पे खुश होने वाले ना मजीद कमाते हैं ना मजीद मिलते हैं, उनकी ज़िंदगी में एक जमूद आ जाता है। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़ लीजिए कि जिस चीज़ को मैं और आप अपने ऊपर लेकर सोचेंगे कि क्या मेरे अंदर ये चीज़ मौजूद है, और वो क्या है? इख्तियारे नफ्स। इख्तियार किसको कहते हैं? अपने ऊपर कंट्रोल होना, नफ्स पे कंट्रोल। ये कैसे होता है इसको भी देखिए। इनको पता होता है कि नतायज वो खुद पैदा करते हैं, यानी आज मेरे सामने हर नतीजा जो आ रहा है ना मेरे इम्तिहान का या मेरी ज़िंदगी का या मेरे मामलात का, ये मेरा अपना पैदा किया गया। मतलब अगर मैं फर्स्ट आई हूँ तो यस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की थी तभी आई ना। आज मुझे रिश्तेदार कहते हैं कि ये बहुत केयरिंग है, तो वाकई मैंने उनके लिए मन लगाया था, बात समझ गए। यानी सेकंड थिंग है, उनको ये पता है कि मेरा नफ्स जो चूज करता है वही नतीजे निकलते हैं। दूसरी तरफ में आप ये कह लीजिए कि मेरी कामयाबियों और मेरी नाकामियों का जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, मैं खुद हूं। मानिए ना मानिए, कभी इस खसार से बाहर आकर देख लीजिए, आप जिंदा हो जाएंगे दोबारा। हम हमेशा दूसरे के कंधे पे तलवार रख के चलाते हैं, नतीजा क्या था हम खुद को कभी पहचानते नहीं। और तीसरी चीज जो कामयाब लोगों को जितवाती है वो है तैयारी। वो जीतने की तैयारी कर चुके होते हैं और वो तैयार होते हैं, इन्हें जीतने के ढंग आ चुके होते हैं। तैयारी किए बगैर ये पहली दो बातें भी बेकार है, क्योंकि ख्वाहिशों से सिर्फ जन्नत नहीं मिलती, ख्वाहिशों से तो दुनिया की कोई चीज़ नहीं मिलती। उसके लिए बंदे को अपने नफ्स को इख्तियार देना पड़ता है कि अच्छे काम करो, मेहनत करो। आपको डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है, नफ्स को चूज़ कराइए कि पढ़ना है, सुबह शाम पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके लिए तैयारी करें। वो अफराद जो तैयार नहीं होते, इन्हें किसी भी सूरत हाल से फ़ायदा नहीं होता। मसलन कोई चांस आपकी ज़िंदगी में आया, चलना है, चले वहाँ, ज़रा कोई अच्छा काम ले लें, कोई अच्छा किसी की खिदमत का फ़ायदा देने का या दुनिया का कोई फ़ायदा ले लें। आप कहते हैं हाँ ऑप्शन तो बड़ी अच्छी, पर मैं तैयार नहीं हूँ, नहीं नहीं मैं इतनी जल्दी नहीं आती, आप जाइए मैं फिर देख लूँगी। कोई कहते सेल लगी, आधे घंटे में वहाँ पहुँच के तो लूट के ले आएंगे उनको, बात तो बड़ी अच्छी है पर मैं जिनी पे तैयार नहीं हूँ, मैं भी निकल नहीं सकती। तो तैयारी बहुत लाजिम है। कामयाब लोग खुशकिस्मत होते हैं क्योंकि उन्होंने बड़ा बड़ा लिखिएगा मौके से फ़ायदा उठाया होता है, गेट बेनिफिट फ्रॉम दी अपॉर्चुनिटीज। और कामयाब लोगों में अमूमन पुरुमीद रहने का रुझान होता है, इंक्लाइनेशन टू बी सक्सेसफुल। जीतने वाला अपने को बेहतर शख्स समझता है और कोशिश करता है कि वो ये बात साबित करे। हर जीतने वाला ये चाहता है कि लोग ये माने, साबित हो जाए कि वाकई मैं डिजर्व करता था इसको, ऐसे इत्तफाकत नहीं मैं जीता। अच्छा, जीत के रास्ते में एक रुकावट भी है, वो क्या है? शक, शुबा। पुरशुबा आदमी, यानी जिसके दिल में ये शक आ गया ना कि नहीं मैं नहीं कामयाब हो सकती, वो हमेशा नाकाम रहेगा। जीतने वाले शुबे में नहीं रहते। आपको तो एक शख्स था मार्क स्पिंस, कुछ भी उसका नाम है, इसको उम्मीद थी कि ओलंपिक गेम में इसको 7 गोल्ड मेडल मिलेंगे। 7 बार वो पानी में कूदा और 7वीं बार इसने स्विमिंग का रिकॉर्ड तोड़ा और कामयाब हो गया। वजह क्या है? तवक्को थी, वो तैयार था और उसने साबित कर दिया। तवक्को, तैयारी तो साबित करना। अगर उसने ये ना घर से सोचा होता ना कि आज मैंने ये रिकॉर्ड तोड़ के आना है, तो फिर वो कभी भी आगे ना आता। तो हमेशा याद रखिए, शक को अपनी जिंदगी से निकाल दें। मैं फेल हो जाऊंगी, बस आप ड्राइविंग टेस्ट देते हैं, मैं तो नहीं पास होंगी, मुझे नहीं मिलना लाइसेंस, तो वाकई नहीं मिलना। हर दफा फिर पैसे देकर क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको उम्मीद होती इस दफा मिल जाएगा, तो वो उम्मीद आपको ड्राइविंग टेस्ट पास करा देती है। आप कहते हैं वो ऊपर पहाड़ है, मैंने चलना है, चल जाऊंगी, क्या होगा, थोड़ा सा ब्रेक ले लूंगी, जूते अच्छे रख लूंगी, कुछ नहीं होगा, ये होगा, चल जाएंगे आप। और आप कहते नहीं, पता नहीं मेरे अंदर दिल की ना तकलीफ हो और मुझे पता ही नहीं है, और ऊपर चढ़ी तो मेरी ऑक्सीजन कम हो जाएगी, फिर शायद मैं प्रेग्नेंट ही ना हूँ, फिर बेबी खराब हो जाएगा, ये होगा। आप कभी नहीं चढ़ेंगे, वो जिसको कहते हैं ना सोच ही पे आते बंदा गया। हमेशा बी होपफुल, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे कामयाब दिन है, आज मुझे वो कामयाब होनी है जो पहले कभी नहीं हुई। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपको वो फायदे ना मिले आप जिसके मुस्तहिक थे, लेकिन आपको वो जरूर मिलेगा जिसकी आपको तवक्को थी। दो लफ्ज लेके, मुस्तहिक, डिजर्विंग। बहुत सारे लोगों को जिंदगी में वो नहीं मिलता जो वो डिजर्व करते हैं। मसलन कई लोगों का आपने सुना है मास्टर्स किए हुए और सड़कों पे बैठे हैं, जॉब नहीं मिल रही। मुमकिन है आप में एक टैलेंट है, आपके खूबी, लेकिन आपको नहीं मिली। इसके बरक्स आपको तवक्को है किसी चीज की, वो जरूर हो जाता है। उसके लिए आपके टैलेंट की भी जरूरत नहीं होती। नाकाम अफराद हमेशा सोचते हैं शायद मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, शायद मैं बीमार होने वाली हूं, शायद अगले साल मुझे कैंसर हो जाएगा, शायद मैं फेल हो जाऊंगी। बस फिर वो शायद नहीं, वो हो जाते हैं। हमेशा याद रखिए कि आपका जो जहन है ना, जहरी प्रगंदगी कहते हैं मेंटली स्कैटर्ड होने को। सबसे पहले जो हमारा जिस्म काम करना छोड़ता है ना, या जो पहला वायरस हमारे ऊपर अटैक करता है ना, वो हमें जहनी तौर पे स्कैटर्ड करता है। आपका सोच बिखर के, मुंतशिर सोचें, फिर जिस्मानी बीमारियां और कमजोरियां निकलती हैं। यानी जहनी परेशानी का नतीजा जिस्मानी बीमारियों और कमजोरियों की शक्ल में जाहिर होता है, और खौफ हमें इस सिचुएशन में आके पकड़ लेता है जिससे हम डरते हैं, और हम फिर कभी रूहानी बीमार, कभी जिस्मानी बीमार, कभी स्ट्रेस्ड और कभी टेंशन वाले, और वट एवर जो भी हम कर सकते हैं अपने आप को जुल्म अपने ऊपर वो हम करने लगते हैं। चलिए आप अपने उत्तर से चंद सवाल पूछें। मुझे अपने आप से क्या तवक्को आता है, लिखें आप, मैं आपको चंद सेकंड देती हूँ। आपको आपसे क्या तवक्को आता है, यानी आप कल क्या करेंगी, अगले एक हफ्ते में आप क्या कर लेंगी, एक महीने में आप क्या करेंगे, एक साल बाद आप कहाँ होंगे, आपका 5 साल मंसूबा है कोई? खुद से पूछें, लिखें और रियलिस्टिकली लिखें, जगह छोड़ दें बाद में सोच सोच के लिखें। आप मुझे पूछेंगे, मैं आपको लंबी लिस्ट बता दूंगी, अभी से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 5 साल का प्लान, मेरे आप कह लेंगे मेरे 5 उंगलियों पर लिखा हुआ है, जिसके लिए मैं एक एक दिन गिन रही हूँ। कल क्या होना है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा प्लान है और मैंने देखा आज तक पिछले 15 सालों में वही हुआ है जो मेरा प्लान था। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आप एक दफा अल्लाह की रजा पे राजी हो जाएं, ये शुरू का टेस्ट होता है, कर दें फिर सारी उम्र अल्लाह आप पे ट्रस्ट करता है, चलो ये बंदा अच्छा ही मांगता है दे दो। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं मैं सिखा रही आपको, क्या बड़े बोल बोले, अंदर से टूट जाए पूरे वो बोनलेस मीट की तरह मैरिनेटेड हो जाए कि अल्लाह मैंने आप पे ट्रस्ट किया, आपने मेरी जिंदगी में आज तक जो किए बेहतर किए, जाहिर मुझे अगर कोई तकलीफ भी पहुंची तो खैर थी, अब मैं आपसे राजी हूं। एक दफा ये करें, देखिए जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं ना किसी का ट्रस्ट ले लें, आप किसी को नया नया मुलाजिम रखते हैं ना, हर चीज में तनकीद देखेंगे, नजर रखेंगे, शक होगा, चोरी तो नहीं करता, डिसऑनेस्ट तो नहीं है, अपना काम ठीक कर रहा है। आप शुरू में उसको ताड़ते हैं, एक नया इंप्लॉय क्या, नया वॉलंटियर जो भी आता है ना, उसको शुरू में बहुत देखते हैं, और देखना चाहिए अच्छे लीडर्स को, हर एंगल से देखते हैं, वर्किंग में, एटीट्यूड में, उसके सोच में, पंक्चुअलिटी में, रेगुलरिटी में, एक आधा महीना आप देखते हैं, उसके बाद आप 6 महीने उसकी फाइल ही नहीं खोलते। आप कहते मुझे पता है मैंने उसको ट्रस्ट कर लिया वो ठीक कर रहा होगा, मुझे दिखाए ना दिखाए बताए ना वो कर रहा है। ये अल्लाह के साथ होता है, एक दफा आप अपना ट्रस्ट अल्लाह को दे दें फिर अल्लाह भी आपको ज्यादा नहीं इंशाल्लाह पूछेगा। लेकिन अगर आप में अच्छी तवक्कात नहीं रखते तो फिर बात आगे नहीं जाएगी। दूसरा सवाल अपने आप से पूछिए, यानी आज क्या है, टुडे, आज का दिन, जिसको क्या कहते हैं, एक और नाम क्या टुडे का, प्रेजेंट, और एवरी डे इज अ प्रेजेंट फ्रॉम अल्लाह ताला। प्रेजेंट किसको कहते हैं, गिफ्ट, टुडे इज प्रेजेंट, आज का दिन एक तोहफा है। इमाम इब्ने कय्यम का एक जुमला कहीं पढ़ा था कि हर रोज सुबह होती है और इब्ने आदम कायनात तेरे सामने अपना बेहतरीन हिस्सा पेश करती है, सूरज रोशनी देता है, बादल चमकते हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा। अब देखना यह है कि एंड ऑफ द डे तू क्या भेजता है। आप सोचिए, सुबह हम उठे, हमारा जिस्म काम कर रहा था, मौसम कितना प्यारा था, बिस्तर हमें चुभने नहीं लगा, हर चीज अल्लाह ने बेस्ट फॉर्म में दे दी। लेकिन जरा सोचिए, जिस दिन ज्यादा नेमते लेके उठते हैं उसी दिन तो नहीं नाफरमानियां ज्यादा करके सोते, ये सोचने की बात है। तो पूछिए कि कल का दिन मेरा अच्छा होगा या बदतरीन। अगर आप बेहतरीन की तवक्को रख रहे हैं ना तो आप कामयाब हो जाएंगे। और एक जुमला लिख लें, इसको इंग्लिश में बोलूंगी और आसान होगा, लेकिन उर्दू में, मुश्किलात और मसाइल कामयाब इंसान की नजर में मवाक़े होते हैं। बात वाज़े, मुश्किलात क्या हैं, प्रॉब्लम्स, क्लेमिटीज, और क्या इसके लिए लफ्ज बोलेंगे हम, एडवर्सिटी, और मसाइल भी वही हो गए, यानी क्लेमिटीज और प्रॉब्लम्स अपॉर्चुनिटी बनती हैं कामयाब के लिए। कितनों को समझ आई ये बात, सारा पाकिस्तान शोर मचा रहा है, गर्मी बड़ी, गर्मी बड़ी, गर्मी बड़ी, गर्मी बड़ी, लेकिन उस गर्मी से फसलें पक रही हैं, उससे फलों में रस पैदा हो रहा है, बात समझ रहे हैं, उस गर्मी से आपके पोर्स खुल रहे हैं, आपके जिस्म में से पसीना बह रहा है। आप अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम्स को स्टेप्स बनाकर उस पर खड़े हो जाएं, तो आपका कद ऊंचा हो जाएगा। नहीं समझ आया तो छोड़ दें। इसी तरह से जो जिंदगी की मुश्किलात और मसाइल होते हैं ना, ये कसवटी होते हैं। कसवटी किसको कहते हैं? क्राइटेरियन। मुझे परखा जा रहा है, अल्लाह सुभान तआला इज वॉचिंग मी, कि मैं कैसे बिहेव करती हूँ। और वो हदीस सामने रख लें कि आज अबुल अमरुल मोमिन, मोमिन का मामला बड़ा अजीब होता है। खैर पहुंचती है शुक्र करता है, शुक्र का बदला जन्नत। शर पहुंचता है तो सब्र करता है, और सब्र का बदला जन्नत। और ये खूबी मोमिन के सिवा और किसी को नसीब नहीं होती। खुद से पूछिए, सिर्फ हालात का रोना, सिर्फ माहौल की तल्ही का जिक्र करती रहती हूँ, या मेरी जिंदगी में अच्छी तवक्कात भी हैं? देखिए, बुरे से बुरा शख्स भी आपको मिले ना, तो वो भी तो आपको कुछ सिखा के जाता है। जैसे एक किसी ने को मैसेज भेजा था, उसके अंदर से एक दो बातें मुझे याद आ रही हैं कि अगर तुम्हारा वास्ता किसी गुस्से वाले इंसान से बढ़ जाए, अब इसे एक तसव्वुर कर लेते हैं ना हमको कि ये भी तो एक मुश्किल है ना, मसला है, तो कोई बात नहीं, वो आपको सब्र सिखा रहा है, आप सब्र सीख लें। गुस्से वाले के आगे आप चुप रहना सीख लें, फिर आप देखेंगे कि आपको अब इससे बढ़कर क्या हो। मैं इसको पता कैसे सोचती हूँ कि जिंदगी में बाज़ दफ़ा मुश्किलात में हम घिरते हैं ना, तो जब हम मुख्तलिफ मुश्किलात में घिरते हैं ना, तो उसी में से खैर निकलती है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि रात अंधेरी होती है तो फिर उसी में से सुबह निकलती है। बिल्कुल इसी तरह से आप सोचें, जिंदगी में आज तक मेरे साथ किसने बदतरीन किया, बद से बदतरीन बिहेवियर मेरे साथ किसने किया? सोच लें, मुझे तो कोई नहीं दिखता अल्हम्दुलिल्लाह, आपको शायद कोई दिख जाए, कोई मासी का तजुर्बा, कोई खाल का, कोई भी। फिर आप सोचें, अच्छा कभी वो मेरी ज़िंदगी में ना आती ना, या वो ना आता ना, तो मैं भी कुछ करती या मैं खुश होती। लेकिन आप ये सोचें, उस शख्स ने आपकी ज़िंदगी में आकर आपको एक सबक सिखा दिया, आपको आयरन वुमेन बना दिया, तो बताइए फिर वो आपका मुहसिन हुआ कि दुश्मन? मुसीबत उस्ताद बन जाती है अगर हम उससे सबक सीखें, और अपने उस्ताद भी बेकार हो जाते हैं अगर हम उनसे कुछ ना सीखें। हमेशा अपनी ज़िंदगी में खैर को ढूंढें, आफियत को ढूंढें। आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा आप बुरी चीज़ों को अच्छा करके पेश करेंगे, उतना ही आपके लिए खैर का ज़रिया होगा। तो बुरे से बुरे माहौल में भी आप खुश रह सकते हैं, इस सोच के साथ कि वो कहते हैं ना कि तुंदी वादे मुखालिफ से ना घबरा के औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ बन जाएंगी। फिर इसी तरह से आप देखिए कि मुस्बित तवक्को की घर में इसी तरह ज़रूरत है जैसे खिलाड़ी को मैदान में होती है। अच्छाई की तवक्को रखने वाले पेरेंट्स बच्चों में अच्छा पहलू, रोशन पहलू देखने की आदत डालते हैं। इसका पेरेंटिंग से बहुत ताल्लुक है गहरा, यानी ये जो आप खुद पूर्व उम्मीद है ना, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे भी पूर्व उम्मीद होंगे। कभी अपने बच्चों को नेगेटिविटी के साथ ना पालें। आप उनको कहें कि बेटा आपके अच्छे नंबर्स नहीं आ रहे, या आपको लगता है कि क्लास का फलां बच्चा आपको तंग करता है, या फलां टीचर आपको कम अहमियत देकर दूसरे को आगे कर देता है, कोई बात नहीं है, आप काम करते जाएं। उनको बल्ब जला के दिखाएं, एक नाइट बल्ब जल रहा है ना, उसके आगे आप एक 80 का या 100 का वॉट का बल्ब जलाएं, तो वो छोटा बल्ब थोड़ी देर में नज़र भी नहीं आएगा। बेटा आप अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर लें, बेटा आप ऐसे बन जाएं कि आपका टीचर आपको पीछे कर ही ना सके। हमेशा अपने बच्चों को रोशन पहलू बनना सिखाएं। कामयाब इंसान जो होता है ना, उसको ये याद होता है कि बदकिस्मती हमेशा मनफी सोचों से आती है, नेगेटिव थॉट से आती है। जब आप मनफी सोच ही नहीं रखेंगे तो बदकिस्मत नहीं होंगे, जब आप तवक्को ही नहीं रखते तो फिर आपको मिलेगा क्या? कहते कि एक 14 साल लड़की थी, 14 ईयर्स ओल्ड लड़की थी, उससे पूछा गया कि तुम जब स्विमिंग के मुकाबले में जा रही हो तो तुम अपने आप से क्या उम्मीद लेके जा रही हो, क्या करके आओगी? कहने लगी आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दूंगी। और उसने एक नहीं, उस रोज़ कहते 2 रिकॉर्ड कायम किए और वो लोगों में मारूफ हो गई। क्योंकि घर से सोच रही थी, शेन गोल्ड उसका नाम था, अगर आपने कभी उसका नाम पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया से आई थी ओलंपिक गेम्स में, और कहते हैं कि इसको छोटी उम्र में ही आगे बढ़ने का घुर आ गया था। तो हमारे 14 साल के बच्चे बास दफा हमारी डांट ही खा रहे होते हैं बेचारे, सुबह उठ के खाना भी खाते हैं डांट भी खाते हैं। कभी भी अपने बच्चों को इस तरह के माहौल में ना पालें, तुम कुछ कर नहीं सकते। ये भी एक किलिंग हैबिट्स होती हैं पेरेंट्स की, जो अपने बच्चों को कहते तू किसी काम का नहीं, तू निकट्टू रहेगा, तुमने रेडी लगानी है, और देखना तेरा मामला ही ऐसा है, तू मुझे बातें कराएगी। ये नहीं करें, कभी भी ना करें। जब हम अपने अफाल के खुद जिम्मेदार हैं ना, तो फिर नतायज के भी हमें खुद ही जिम्मेदार होना पड़ेगा। जुमला अच्छा नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं कि आई एम सेल्फ मेड। सेल्फ मेड नहीं है हम, हमें अल्लाह ने मेड किया, वी आर मेड बाय अल्लाह, राइट? और अल्लाह ही ऑपरेट भी कर रहा है। लेकिन आप अगर इस जुमले को बोले बगैर अपनी जिंदगी को खुद बनाना आज शुरू करेंगे ना, इंशाल्लाह ताला आप आगे से आगे जाएंगे। और आप ये भी याद रखिए कि लोग नाकाम लोगों से ऐसे भिदकते हैं जैसे गधा शेर को देख के भिदकता है, क्योंकि नाकाम लोग आम लोगों के भी हौसले गिराते हैं, पस्त करते हैं, और रोने ही रोने हैं ना, बैठ के अपने रोने ही सुनाएंगे ना। एक दिन सुना लें खुशी से, कोई सुनेगा कि अच्छे से अपने दिल की सारी सुना दी, दूसरी दफा थोड़े से कम, तीसरी दफा आप देखिएगा कि वो आपको पास भी नहीं फटकने देगा, नहीं घर पे नहीं है, बाद में बात करना। हमेशा लोग कामयाब लोगों की सिमत झुकते हैं, क्योंकि उनको उनसे हौसला और हिम्मत मिलती है। वो कहते नहीं, हमें कुछ मोटिवेशन दे, हमें कुछ करें। और खुश ख्याली या अच्छी तवक्को जो है ना, एक जंगल की आग है जो दूर से दिखती है, हर आदमी जीतने वाले को पसंद करता है। कभी आप सोचे कि जीतने वाले के पास तो रेडियो वाले भी जाएंगे, अखबार वाले भी जाएंगे, उसके इंटरव्यूज लेंगे उससे, वट एवर। कभी आपने सोचा कि नाकाम लोगों के पास कोई जाता है? सुनाइए जी, आप कैसे नाकाम हुए? हाँ, कुरान में आयत है, मा सलकक्कुम फी सकर, सूरत मुद्दसर में आता है, जहन्नमियों से जाके पूछेंगे बताओ ये तुम्हें जहन्नम में क्या चीज़ ले आई, पहली चीज़ क्या कहेंगे? लम नकुम मिनल मुसल्लीन। और फिर दो तीन और बातें, नमाजें नहीं पढ़ते थे, बैसे बड़ी करते थे, क़यामत के दिन को झुठलाते थे। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में खैर से लेकर चले, और ख़ुद तवक्कुई और खुश तवक्को होना, ये खुश ख्याली, वलवले, अकीदे, यकीन और उम्मीद का नाम है। किसी भी कैदी के पास जाए तुम, आप उसे पूछें तुम्हें क्या तवक्को है, क्या चाहते हो, तो क्या कहेगा? मुझे रहा कर दिया जाए। तो हम तो आज भी रहा है। आप अपने आप को इमेजिनेशन में लाए, आप एक किसी जेल में बंद हैं, कर नहीं सकते अपनी मर्जी से, सोच नहीं सकते, बोल नहीं सकते। आपकी क्या तमन्ना होगी अपने अंदर उठने वाले सारे जज्बों के जवाब में? एक दफा मुझे आजादी मिल जाए, फिर बाहर जाके ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। तो वो तो कैदी है, मैं तो आप आजाद हैं। वट स्टॉप्स अस टू बी सक्सेसफुल? तो आज के सेशन की आखिरी बात, क्या आखिर आप इस जिंदगी में जीत के अलावा फिर किस चीज की तवक्को रखते हैं? जीतने की तवक्को रखें, और गंवाने के लिए आपके मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। जो हो गया सो हो गया। सारी बात का खुलासा यही है कि इन बातों को बार बार सुने, बार बार पढ़ें, अपने से वादे करें, अहद करें, आगे से आगे चलें। इंशाल्लाह कल फिर हम एक छोटा सा सेशन ले लेते हैं इसी पे, ताकि इस वीक में ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाए। अल्लाह ने चाहा तो इसको हम कंटिन्यू करके देखेंगे कि फिर इसके लिए मज़ीद कुछ क्या गुण चाहिए। लेकिन आज की इन सारी बातों के जवाब आपको क्या करना चाहिए? अपने आप को कामयाब होने के लिए ख्वाहिश रखें अपने से, तवक्कुआत अच्छी रखें, तैयारी करें, और कहें कि मैं अपने नतायज का खुद जिम्मेदार हूँ। जितना ज़्यादा आप खुद इस चीज़ पे अपनी बात करेंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उतना ज़्यादा अल्लाह ताला आपके लिए आसान करेगा। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।